SBS हिंदी।
दोस्तों, बात करते हैं आज एक ऐसे विषय की जो शायद आपने जाना भी है और नहीं भी जाना। वैसे तो हम भारतीय लोग हर वर्ष प्रतिवर्ष भारत जाते हैं और बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी हैं जो भारत आते हैं, लेकिन इन पर्यटकों में से एक ऐसा भी हिस्सा है जो सिर्फ पर्यटन के हेतु से भारत नहीं आते, वो आते हैं अपनी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। जी हाँ, मैं इंडियन टूरिज्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग मेडिकल टूरिज्म की बात कर रही हूँ। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों में जानने मिला है कि भारत में ये जो मेडिकल टूरिज्म का क्षेत्र है वो प्रतिवर्ष 25% से बढ़ रहा है। तो आखिर क्या है ये पूरा क्षेत्र, क्या लाभ है, कि कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, चलो इस बारे में हम बात करते हैं किसी एक्सपर्ट से। और आज हमारे साथ जुड़े हैं राजल सुधाकरन जी, जो हेल्थ विंग्स इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है। राजल जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
थैंक यू हरिता जी।
सो सबसे पहले ये बताइए राजल जी, कि ज्यादातर हमारे श्रोताओं को मेडिकल टूरिज्म ये टर्म तो पता ही होगा, बहुत सुनी सुनी जानी जानी है, लेकिन अगर उसकी सही में व्याख्या करने की कोशिश करें, उसको डिफाइन करने की कोशिश करें, तो ये बताइए कि आखिर ये मेडिकल टूरिज्म है क्या?
हरिता जी, मेडिकल टूरिज्म जैसा आपने कहा कि डे बाय डे एक नॉन टर्मिनोलॉजी होता जा रहा है, स्पेशली जब भारत का नाम आता है। मेडिकल टूरिज्म को अगर आप डिफाइन करें, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मेडिकल एंड टूरिज्म। कई विकसित देश और अविकसित देश में दो तरह के तकलीफें हैं। विकसित देश में जैसे मेडिकल फैसिलिटीज कुछ हद तक एक्सपेंसिव होता जा रहा है, बहुत महंगा होता जा रहा है। वहाँ पे कई सिचुएशन ऐसा आता है जहाँ पे कभी कुछ देशों में फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज गवर्नमेंट देता है तो उसमें बहुत लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो ऐसे देशों से लोग किसी और देश में ट्रैवल करते हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज अफोर्डेबली, ये ट्रीटमेंट अफोर्डेबली मिल रहा है। सो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज आ गया। जब कोई पेशेंट एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करता है तो वो ट्रैवल अरेंजमेंट्स जो बोलते हैं उसमें काफी डॉक्यूमेंटेशन आता है, जैसे वीजा हो गया, ट्रैवल ट्रैवल हो गया, वहाँ पे लोकल स्टे का अरेंजमेंट, एकोमोडेशन जो हम बोलते हैं, वहाँ पे फूड का फैसिलिटी, सो स्टे का पूरा अरेंजमेंट, ये सब टूरिज्म के अंदर आ जाता है। सो इसके लिए हम लोग इसको हमने वर्ड दिया है मेडिकल टूरिज्म, जहाँ पे ट्रीटमेंट इज द ऑब्जेक्टिव।
प्रश्न वैसे ही आता है जहन में कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जैसा देश हो गया जहाँ से थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, वो देश नज़दीक पड़ते हैं और वहाँ पर भी मेडिकल टूरिज्म की काफ़ी बेहतर सहूलतें दी जा रही हैं, तो क्यों भारत को मेडिकल टूरिज्म के डेस्टिनेशन के तौर पर पसंद किया जाना चाहिए या किया जाता है?
थाईलैंड और सिंगापुर से भारत आगे क्यों है और रादर वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर इंडिया के लिए क्यों है? जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला 25% से ऊपर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है। बाय 2020 ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया के लिए ये मोर देन $9 बिलियन का वर्थ बिजनेस रहेगा इन मेडिकल टूरिज्म। इसके कई रीजंस हैं। एक, मेडिकल फैसिलिटीज हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास, अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में आजकल अवेलेबल है। एक इंटरनेशनल कमीशन है मेडिकल एक्रेडिशन का, ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल, एक वर्ल्ड बॉडी है जो हॉस्पिटल्स को रेटिंग देता है, उसमें JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा है। उसके अलावा इंडियन मेडिकल अथॉरिटी ने भी एक नेशनल लेवल एक्रेडिशन कमिटी बनाया है, नोन एज NABH, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल, के नॉर्म्स भी बहुत टफ हैं। सो धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि हॉस्पिटल्स का जो इमेज था इंडिया में वो काफी हद तक बदल गया है। देखा जाए तो आजकल के हॉस्पिटल आप इंडिया में आके देखोगे तो इट लुक्स लाइक अ 5-star होटल, यू नो, इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट स्टाफ। इसके अलावा एक बड़ा रीजन मैं ये मानता हूँ कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि डॉक्टर्स को जो एक्सपोजर मिलता है इन टर्म्स ऑफ यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड बीमारियां हैं वो काफी आगे रहता है। एक बड़ा रीजन है कि टूरिज्म एज अ डेस्टिनेशन इंडिया में बहुत कुछ है टू ऑफर, बहुत बड़ा देश है, काफी कुछ यहाँ पे देखने के लिए है। एक बड़ा रीजन क्यों इंडिया आगे है एज कम्पेयर टू थाईलैंड और सिंगापुर, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, बैलेंस थेरेपी, जैसा माना जाता है कि आपको भी पता होगा आयुर्वेदा और योगा इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड।
आपने एक तरह से तो बहुत सही कहा कि आयुर्वेद और योग वो भारत की देन है पूरे विश्व को, लेकिन अगर फिर भी भारत की स्पेशलिटी अगर करें मेडिकल की जो अलग अलग स्ट्रीम है, तो उसमें क्या मुख्य तीन होगी?
सर तो बहुत सारे rather almost everything, सब तरह के ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल है, बट यस नी रिप्लेसमेंट में भारत काफी माना जाता है, फिर कार्डियो में है, बेरेटिक सर्जरी में इंडिया इज वेरी वेल नोन।
तो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए?
इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी, क्योंकि जब एक पेशेंट अपना देश छोड़ के किसी और देश में ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो उसके दिमाग में काफी वरीज या आशंकाएं रहती हैं। फर्स्ट टाइम मैं इंडिया जा रहा हूँ तो कैसा जगह होगा, इंडिया का इमेज फॉर एग्जांपल, यू नो पॉपुलेशन केओस एंड तरह तरह, तो कुछ चीजें हैं जो जो दिमाग में रखना या रादर यू नो एक स्टडी करके जाए बिफोर ही द फर्स्ट पेशेंट कम्स। चूज द राइट हॉस्पिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड गो विद अ मेडिकल टूरिज्म फैसिलिटेटर, क्योंकि ये फैसिलिटेटर के साथ जाने के कई एडवांटेजेस होते हैं। वो लोकल हॉस्पिटल के साथ टाई अप उसका होता है जहाँ पे आपका कॉस्ट एडवांटेज आपको मिल जाता है, आपको एक प्रायोरिटी मिल जाता है, वो आपका लोकल स्टे का अरेंजमेंट हो गया, खाने का अरेंजमेंट, लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे एयरपोर्ट पे उतर के ही कुछ एयरपोर्ट्स में आपको यू नो तकलीफ हो सकता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है पर समटाइम्स इट कैन बी अ प्रॉब्लम इन सर्टन एयरपोर्ट्स। सो एक फैसिलिटेटर आपके साथ हो तो सब कुछ आपका प्री अरेंज रहेगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखें कि मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स हॉस्पिटल्स और फैसिलिटेटर विल आपसे आप पैसा एडवांस में मांगेगा, ये कुछ चीजें आप ध्यान रखें, दैट्स ऑल।
बिल्कुल, और हम आशा करते हैं श्रोता जन कि आपको ये जानकारी लाभदायी निकली होगी। SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच हरिता जी।
आपके विचार हमें बताए, SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।